ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अर्थव्यवस्था के समग्र संकेतकों में सुधार की ओर रुझान है। अर्थ मंत्रालय ने दी जानकारी। राजस्व संग्रह में पिछले आर्थिक वर्ष की तुलना में 11.3% की वृद्धि। पिछले असार 24 की बाढ़ से मितेरी पुल बह जाने के बाद केरुंग में फंसे 117 लोगों को वापस लाने का प्रयास शुरू। पोलिट ब्यूरो और केंद्रीय समिति की बैठक का एजेंडा तय करने के लिए नेकपा एमाले की सचिवालय बैठक जारी। और पाकिस्तान में आई बाढ़ में हुई 63 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। अर्थतंत्र के समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख और सुदृढ़ बनते गया है, ये जानकारी अर्थ मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के मुताबिक राजस्व और संघीय खर्च में वृद्धि हुआ है, तो वहीं बाह्य क्षेत्र सबल होने के साथ आंतरिक अर्थतंत्र क्रमशः सुधार की तरफ है। बीते आर्थिक वर्ष 2081-82 में राजस्व संकलन 11.3%, संघीय खर्च 9.3%, चालू खर्च 5.5%, पूंजी खर्च 16% और वित्तीय व्यवस्था की ओर के खर्च 17.6% के हिसाब से बढ़ा है, ये जानकारी अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता श्याम प्रसाद भंडारी ने दी। आर्थिक वर्ष 2080-81 में देश की आर्थिक वृद्धि 3.67% था और बीते आर्थिक वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 4.61% रहने की अनुमान लगाई गई है। अर्थ मंत्रालय के अनुसार पूंजी बाजार तुलनात्मक रूप में सबल बनते जा रहा है। 2081 आषाढ़ मसांत में 22.4041 बिंदु में रहने नेप्से परिसूचक 2082 आषाढ़ मसांत में 27.9 बिंदु कायम हुआ है। अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय ने कहा कि चालू आर्थिक वर्ष के पहले दिन आज सभी मंत्रालय, आयोग, सचिवालय और कार्यालयों में आर्थिक वर्ष 2082-83 के बजट क्रियान्वयन के मार्गदर्शन भेजा गया है। 24 आषाढ़ को लहेंदे खोला में आई भीषण बाढ़ के कारण मितेरी पुल के बह जाने से केरुंग में फंसे 117 नेपाली नागरिक को वाहन चालक व सहचालक को वैकल्पिक मार्ग से वापस लाया जा रहा है। रसुआ के सहायक जिला प्रमुख अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने बताया कि इन नागरिकों को वापस लाने के लिए परराष्ट्र मंत्रालय के माध्यम से चीनी सरकार से अनुरोध किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि फंसे हुए नागरिकों के रहने और खाने की व्यवस्था चीनी अधिकारियों द्वारा की गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले 3 महीनों बैसाख से असार तक में विभिन्न आपदाओं से 93 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 22 लोग लापता है। इस दौरान 2065 आपदाग्रस्त घटनाएं दर्ज की गई है, जिनमें 445 लोग घायल हुए हैं। प्राधिकरण के प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेश सुनार द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इन घटनाओं से 4,136 परिवार प्रभावित हुए हैं। कुछ दिन पहले 24 असार को रसुआ के भोटेकोसी में आई बाढ़ ने सबसे अधिक धन माल का नुकसान पहुंचाया था। इस अवधि में भूस्खलन, अचानक बाढ़, भारी बारिश, सर्पदंश, आंधी, तूफान, जंगल की आग जैसी घटनाओं से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। बीपी राजमार्ग में आज से रात के समय में सवारी संचालन में प्रशासन ने रोक लगाई है। बीपी राजमार्ग अंतर्गत कावरे प्लांचोक खंड में आज से सिंधुली और कावरे के सीमाना का नेपाल थोक से कावरे के कावरे भंज्यांग तक शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सवारी चलाने पर कावरे प्रशासन ने रोक लगाई है। नेकपा एमाले की केंद्रीय सचिवालय बैठक जारी है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय च्यासल ललितपुर में जारी बैठक में पार्टी के आसन्न पोलिट ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी बैठक की तैयारी लगायत समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। ये जानकारी एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेंद्र प्रसाद गौतम ने दी। काठमांडू महानगर पालिका ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण डेंगू संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। महानगर के महामारी रोग नियंत्रण स्रोत व्यक्ति ऋषि भूसाल ने बताया कि एडिज मच्छर के प्रजनन में वृद्धि से डेंगू फैलने का जोखिम बना हुआ है। तेज बुखार, आंख लाल होना, सिरदर्द होना, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर में थकान व कमजोरी डेंगू के प्रमुख लक्षण है। घर, कार्यस्थल व आसपास पानी जमा न होने दे, पानी के बर्तनों को ढककर रखने, दरवाजे खिड़कियों पर मच्छरदानी लगाने, पूरी बाजू के कपड़े पहनने, दिन व रात में मच्छरदानी का प्रयोग करने का महानगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने जनता के साथ गहरा संबंध बनाकर श्रम और उत्पादन को साथ साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। YCL नेपाल की केंद्रीय समिति द्वारा आज ललितपुर में आयोजित श्रम तथा उत्पादन में YCL अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने लगातार हो रही बारिश और बाढ़ भूस्खलन से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने में सहयोग करने का आग्रह किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हेलो,
के गर्दै छौ?
हाम्रो बिहेको शपिङको लागि आको नि बाबा मम्मीसँग।
ए हो र, अनि मेरो लागि के किन्दै छौ?
बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले। मलाई त कस्तो लाज लाग्छ, भरे राति बोलौँ न ल।
अहिले फ्री वाइफाई छ क्या अफिसमा, बुझ न, भरे कसरी गर्नु?
मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? एनटीसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म।
ए हो त है, मेरो वाइफ त कति स्मार्ट। अब त रातै
हाम्रो। अब रात तपाईको
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने दावा किया कि एक वर्ष की अवधि में भूमि व्यवस्था सहकारी और गरीबी निवारण के क्षेत्र में कई अच्छे कार्य हुए हैं। मंत्रालय में आज आयोजित एक पत्रकार वार्ता कार्यक्रम में जहां वार्षिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई, मंत्री अधिकारी ने कहा कि आवश्यक आईन नियम और कानून बनाकर देश और जनता के हित में काम किया जा रहा है। विवादित ऑडियो रिकॉर्डिंग और जमीन प्रकरण के संदर्भ में सच्ची जानकारी सामने लाने के लिए मीडिया कर्मियों से अनुरोध करते हुए मंत्री ने कहा कि अगर इसमें मैं दोषी पाया जाता हूं तो किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। राष्ट्रीय सूचना आयोग ने नागरिकों के सूचना के अधिकार को लागू करने में सुगमता लाने के लिए आज से RTI मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन शुरू कर दिया है। प्रमुख सूचना आयुक्त डॉ सुरेश प्रसाद आचार्य ने आयोग में आयोजित कार्यक्रम में इस प्रणाली के पहले चरण का शुभारंभ किया। पहले चरण में संघीय मंत्रालयों, संवैधानिक निकायों, केंद्रीय आयोगों, विभागों और अन्य सरकारी कार्यालयों से संबंधित सूचनाएं इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मांगी जा सकेगी। यदि मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो इस प्रणाली के जरिए पुनरावेदन अपील भी किया जा सकेगा। भक्तपुर के सीपाडोल स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर में आज से 38 दिनों तक चलने वाला श्रावणी मेला शुरू हो गया है। डोलेश्वर महादेव मंदिर संरक्षण तथा विकास समिति के अध्यक्ष धर्मराज बसनेत ने बताया कि इस मेले के दौरान लगभग 3 लाख तीर्थयात्रियों, नेपाली और भारतीय के आने की उम्मीद है। मेले के दौरान 60 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है, साथ ही निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ सीपाडोल के प्रसिद्ध आशापुरी महादेव मंदिर में भी 1 महीने तक चलने वाला मेला शुरू हो गया है। यह मेला श्रावण मास की धार्मिक महत्ता को देखते हुए आयोजित किया जाता है, जहां भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान की प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एजेंसी PDAMA का कहना है कि बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में 63 लोगों की मौत हो गई है। BBC उर्दू ने एजेंसी के हवाले से बताया कि 24 घंटे में चकवाल में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इस साल बारिश के कारण पंजाब प्रांत में 103 लोग मारे गए हैं। पीडीएमए का कहना है कि मानसून की बारिश के कारण पंजाब की नदियों और नालों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से पुराने मिट्टी ईंटों से बने घरों में न रहने की अपील की गई है। एजेंसी के प्रमुख ने बताया कि बचाव अभियान के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों सहित सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू पंजाब के प्रवक्ता ने बताया कि झेलम में आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। अब तक झेलम में आई बाढ़ से 57 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि मियांवाली, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, डीजी खान, रहीम यार खान, राजनपुर और लैयाह में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अर्थव्यवस्था के समग्र संकेतकों में सुधार की ओर रुझान है। अर्थ मंत्रालय ने दी जानकारी। राजस्व संग्रह में पिछले आर्थिक वर्ष की तुलना में 11.3% की वृद्धि। पिछले आषाढ़ 24 की बाढ़ से मितेरी पुल बह जाने के बाद केरुंग में फंसे 117 लोगों को वापस लाने का प्रयास शुरू। पोलिट ब्यूरो और केंद्रीय समिति की बैठक का एजेंडा तय करने के लिए नेकपा एमाले की सचिवालय बैठक जारी और पाकिस्तान में आई बाढ़ में हुई 63 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।